તારીખ 22/9/1991 શ્રી સમયસાર ગાથા 181-183 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું હૈદરાબાદમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 41 મૂળ કેસેટમાં હમિંગ છે તથા અવાજ ફાટે છે.
પર્યુષણ પર્વ કા આજ અંતિમ દિન હૈ. उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन आज बोला जाता है. ब्रह्म मैंने आत्मा, आत्मस्वरूप में अनंत आनंद है, अनंत सुख है. इस आनंद के उपभोग में तीव्र लीनता हो जाती है. उसको आत्मचर्या मैंने ब्रह्मचर्या कहने में आती है. ब्रह्म मैंने आत्मा, उसी को उत्तम मैंने सम्यक रूप से ब्रह्मचर्य कहने में आया है. ये ब्रह्मचर्य की मूल परिभाषा ऐसी है. और आत्मा में सुख होने से, जब अपने शरीर में सुख नहीं है जिसको, या अपना शरीर भी सुख का कारण जिसको भाषित नहीं होता है, इसलिए जो मुनिराज शरीर की सावधानी छोड़ देते हैं, अपने शरीर की सावधानी छोड़ देते हैं, अपने शरीर में जिसको व्यामोह नहीं है, वो दूसरे स्त्री आदियों के शरीर में सुख की कल्पना कैसे करें. उनको अपने शरीर की आसक्ति नहीं, उनको दूसरे के शरीर की तो आसक्ति होती ही नहीं, इसलिए उनको व्यवहार ब्रह्मचर्य कहने में आता है. ऐसे स्वभाव दृष्टि से अपने स्वरूप में तीव्र रूप से लीनता होने का यहाँ उपदेश है. और यही जीव का पवित्र परिणाम है, शुद्ध परिणाम है. और ऐसी लीनता के कारण, स्वभाव स्थिरता के कारण, पंचम गुण स्थान से लेकर के ऊपर के सभी गुण स्थान में बुद्धिपूर्वक का ए ब्रह्मचर्य का विकल्प का उत्पत्ति नहीं होता है, उसी को उत्तम ब्रह्मचर्य कहने में आया है. ये पंचम गुण स्थान से सम्यक प्रकार से शुरू होता है. ऐसे मुनिराजों को, इसके ऐसे संतों के चरणों में इंद्रो चक्रवर्तियों भी नमस्कार करते हैं. उनकी पवित्र दशा देख करके, वीतरागी दशा देख करके, इंद्र चक्रवर्ती आदि जो जगत के बड़े बड़े लोग कहते हैं, बोलने में आते हैं, कहने में आते हैं, वो भी उनको नमस्कार करते हैं. जो व्यवहार ब्रह्मचर्य के परिणाम हैं, ये शुभ भाव के कारण है या शुभ बंध के कारण है. और निश्चय स्वरूप लीनता के जो परिणाम हैं, इसका उत्तम विशेषण है. जो निर्विकल्प वितराग भाव रूप है, ये बंध के कारण नहीं होते, लेकिन ये मोक्ष के कारण है. ऐसे शुभ परिणाम में और शुद्ध वितरागी परिणाम में बड़ा अंतर है. यहाँ वितरागी परिणाम परिणमन की मुख्यतया चारित्र मोह के अभाव की बात लिया है, ऐसा समझना चाहिए. ऐसे आज के उत्तम ब्रह्मचर्य के विषय में व्यवहार और निश्चय से संक्षिप्त व्याख्यान है. समय सार संवर अधिकार 181-82-83 गाथा का भावार्थ। भावार्थ में ये बात चल रही है कि ज्ञान का प्रदेश और कर्म का प्रदेश भिन्न भिन्न है। प्रदेश भेद का यहाँ उल्लेख करने का यही कारण है कि हम संसार अवस्था में पुद्गल प्रदेश का आधार लेते हैं, यानी पुद्गल सत्ता का आधार लेते हैं। अमुक प्रकार के संयोग होगा तभी जीवन चलेगा, वरना हमारा क्या होगा, ऐसा एक भय रहता है। ये पर संबंधित जड़ संबंधित आधार बुद्धि के कारण ये रहता है। तो आचार्य महाराज ये फरमाते हैं कि जड़ कर्म तो प्रकट ही चैतन्य से भिन्न स्वभाव वाला भिन्न पदार्थ है, लेकिन विभाव का भी क्षेत्र भिन्न है। वहां तक इस बात को ले लिया है, इसलिए अमुक प्रकार के शुभ परिणाम के आधार से शुद्ध परिणाम होगा ये सिद्धांत नहीं रहता। बुद्धिपूर्वक की मिथ्या मान्यता में एक गलती कैसी होती है कि अमुक प्रकार के शुभ परिणाम करेंगे फिर बाद में सम्यक दर्शन आदि शुद्ध परिणाम की प्राप्ति होगी, अगर अमुक प्रकार के शुभ परिणाम नहीं करेंगे तो शुद्ध परिणाम की प्राप्ति नहीं होती। तो यहाँ आचार्य महाराज ये कहना चाहते हैं कि शुद्ध परिणाम का पुरुषार्थ अंतर्मुखी होता है और उसको कोई अपेक्षा शुभ परिणाम की नहीं है। शुभ परिणाम की अपेक्षा तो नहीं है, किंतु शुभ परिणाम की उपेक्षा है। अपेक्षा तो नहीं है किंतु उपेक्षा है। अपेक्षा तो विपर्यास है, शुभ परिणाम की अपेक्षा वो विपर्यास है, तब शुद्ध परिणमन होता है। इसलिए कारण कार्य का आधार आधेपणा का, कर्ता कर्मपणे का, भोक्ता भोग्यपणे का, सभी प्रकार का विपर्यास एक साथ चलता है। बात कर्ता कर्मपणा से लियो लेवें या भोक्ता भोग्यपणा से लें या आधार आधेपणा से लेवें, लेकिन मिथ्यात्व का नाश होता है, मैं सभी प्रकार का मिथ्यात्व का नाश हो ही जाता है। उनको मैंने द्रव कर्म और क्रोधा और शरीर आदि नो कर्म और ज्ञान का प्रदेश भेद होने से अत्यंत भेद है, थोड़ा भेद नहीं है लेकिन अत्यंत भेद, मैंने अत्यंत जुदाई है, स्वरूप विपरीतता है। राग की, कर्म की और नो कर्म के स्वरूप की और ज्ञान और आत्मा के स्वरूप की बिल्कुल स्वरूप विपरीतता है। स्वरूप विपरीतता है, कारण कार्य विपरीतता है, तीन प्रकार के विपर्यास का अभाव होता है ना सम्यक ज्ञान में, स्वरूप विपरीतता, कारण विपरीतता और भेदाभेद विपरीतता। तो स्वरूप तो प्रत्यक्ष रूप से विपरीत है, एक गुण को नहीं लेना है लेकिन एक गुण से, एक गुण के माध्यम से या एक गुण के परिणाम के माध्यम से पूरा पदार्थ को ले लेना, पूरा एक गुण का भेद नहीं लेना है, क्योंकि भेद का ग्रहण करवाने का यहाँ अभिप्राय नहीं है, और भेद का ग्रहण से विकल्प की उत्पत्ति होती है, इसलिए भी भेद का ग्रहण नहीं है। लेकिन जो भेद में खड़ा है ऐसे जीव को भेद से कहे बिना अभेद का ग्रहण भी नहीं हो सकता, इसी कारण से भेद से, और कहने में तो भेद आ ही जाएगा, हो ही जाएगा, जब कथन करेंगे तो अभेद का कथन हो ही नहीं सकता, इसलिए कथन में तो भेद हो जाता ही है, नहीं करना चाहे तो भी, ये अनिवार्य परिस्थिति है। इसलिए उपयोग में क्रोधादिक कर्म तथा नो कर्म नहीं है, और क्रोधादिक में कर्म तथा नो कर्म में उपयोग नहीं है। उपयोग लिया है, उपयोग ज्ञान के पर्याय है, तो ज्ञान के उपयोग ज्ञान के पर्याय, दूसरे गुणों के पर्याय को उपयोग नहीं कहते, एक चैतन्य गुण के पर्याय को ही उपयोग कहते, ज्ञान और दर्शन दोनों को उपयोग कहते हैं। पर ये उपयोग स्वपर प्रकाशक कोई ऐसा परिणाम है कि ऐसा ही आत्मा है ऐसा समझने में आता है। क्या? जैसे नमक है उसमें खारापन है, नमक के अलावा कहीं खारापन नहीं होता, तो नमक कैसा है कि खारा है ऐसा जानने मात्र से पूरा नमक का ज्ञान हो जाता है। उसमें और भी गुण है, उसमें क्षेत्र प्रदेशत्व है, उसमें उसका रंग भी है, वर्ण गुण जिसको कहते हैं वर्ण गुण भी है, गंध गुण भी है, स्पर्श गुण भी है, फिर भी रस की मुख्यता होने से एक रस मात्र से पूरा पदार्थ का ग्रहण हो जाता है, ऐसे विशिष्ट गुण के विषय में होता है। ठीक उसी तरह एक उपयोग के माध्यम से उपयोग स्वरूप आत्मा है ऐसा बोला जाता है। थोड़ा इसमें रहस्य अवश्य है। देखिए मूल गाथा में ये बात है, मूल गाथा में क्या बात है, तैयाण किंचिम कुवदी भावम उपयोग सुदप्पा, भावम उपयोग शुद्धात्मा ऐसा कहते हैं, त्यारे न काई पण भाव ते उपयोग शुद्धात्मा करे, तो उपयोग स्वरूप शुद्धात्मा एम कहूं से क्या, शुद्धात्मा कैसा, उपयोग स्वरूप शुद्धात्मा, एक विशिष्ट बात है, इसके बिना सिवा आत्मा का ग्रहण नहीं होता। आत्मा 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 ऐसे कहने से आत्मा का ग्रहण नहीं होता, लेकिन जिस उपयोग से जानने का प्रयास होता है, आत्मा को ग्रहण करने का जानने का प्रयास होता है, वो उपयोग स्वरूप ही है, ऐसा उपयोग स्वरूप से पूरा आत्मा का ग्रहण हो जाता है। इसलिए ज्ञान के माध्यम से सारा समय सार में आत्मा को ज्ञान मात्र कहने में आया है। उतना ही नहीं, जब इस विषय पर आचार्य महाराज ने स्पष्टीकरण देना चाहा कि ऐसा कोई नहीं समझे कि आत्मा में एक ज्ञान ही गुण है दूसरे गुण नहीं है, ऐसा कोई नहीं समझना चाहिए, इसलिए उन्होंने 47 शक्तियों का वर्णन किया, और 47 शक्तियों का वर्णन करने पर भी थोड़ा और बात यह कहा कि ऐसी ऐसी तो अनंत शक्ति से आत्मा अच्छी तरह भरा हुआ है, परंतु फिर भी वो ज्ञानमयपणा का त्याग नहीं करता, ऐसा फिर वजन देते हैं ज्ञान पर, यही इसके पीछे रहस्य है। देखिए श्लोक है, 264 श्लोक है ये। इत्यादि अनेक निज शक्ति सुनिर्भरोपि, ऐसा 47 शक्ति का वर्णन करके हैं कि बाद ही श्लोक की रचना किया कि इत्यादि अनेक निज शक्ति सुनिर्भरोपि यो ज्ञान मात्रमयताम निधाति भावः। ऐसे ऐसी जो पूर्वे कही ऐसी अनेक निज शक्तियों से अच्छी तरह भरा हुआ होने पर भी जो भाव मैंने जो पदार्थ भाव मैंने पदार्थ ज्ञान मात्र मयपणा को छोड़ता नहीं है, इस पर हमारा वजन है। आचार्य महाराज क्या कहते हैं, भले ही अनेक शक्तियों का वर्णन हमने कर दिया फिर भी ज्ञान मात्रमय आत्मा है उसको हम फिर कहेंगे, फिर भी उसको ऐसे इस तरह कहेंगे। इसका क्या मतलब कि समझ में आता है, ज्ञान में आता है, भाव भाषण में आता है, वो ज्ञान का कार्य है। सभी गुणों को ज्ञान समझता है कि सब गुण का स्वरूप कैसा है। सिवा ज्ञान किसी को समझने में किसी गुण में कोई सामर्थ्य नहीं है। इसलिए अपने को अपने स्वरूप को ज्ञान के स्वरूप को और दूसरे दूसरे गुणों के स्वरूप को ज्ञान ही समझता है। स्वसंवेदन भी अनुभव भी ज्ञान में होता है, भाषण भी ज्ञान में और अनुभव भी ज्ञान में होता है। इसलिए आत्मा अनंत गुण संपन्न होने पर भी ज्ञान प्रधान गुण वाला पदार्थ है, ऐसी बात है। वैसे अपने अपनी शक्तियां अपनी विशिष्टता अनंत ही है अपने में, फिर भी प्रयोजन की सिद्धि में ज्ञान की प्रधानता है, ऐसा एक अभिप्राय यहाँ पर है कहने में। और समय सार में भी ग्रंथ श्रद्धा प्रधान होने पर भी ज्ञान मात्र ऐसा ज्ञान के माध्यम से मिथ्या श्रद्धा को पलटवा करके सम्यक श्रद्धा करवाई ही है। इसलिए ज्ञान ही साधन है, ये बात सिद्ध होती है। कहते हैं कि उपयोग में क्रोधादिक भाव कर्म द्रव कर्म ज्ञानावरणादिक और नो कर्म शरीरादिक नहीं है, और क्रोधादिक में कर्म में और नो कर्म में उपयोग नहीं है। क्रोधादिक चैतन्य परिणाम चैतन्य का विभाविक परिणाम होने पर भी उसमें उपयोग नहीं है। रागादि में जानने का नहीं होता, जैसा जड़ में जानने का नहीं होता, उद्गल जैसा ज्ञान के अभाव स्वरूप है, वैसे रागादि विभाव परिणाम भी जानने का कार्य नहीं कर सकता। चैतन्य विभाव होने पर भी उसमें अंधेरा है, ज्ञान का प्रकाश उसमें नहीं है। गुरुदेव की तो ऐसी भाषा है कि चैतन्य प्रकाश का एक किरण एक अंश भी राग में नहीं है। इसलिए राग है सो अंधा है, जैसा पुद्गल परमाणु अंधा है वैसा राग ही अंधा है, ऐसा कहते हैं। इसलिए क्रोधादि कर्म नो कर्म में उपयोग नहीं है। इस प्रकार से उनको पारमार्थिक आधार आदेश संबंध नहीं है। आधार आदेश संबंध नहीं है ऐसा नहीं लिया, किंतु पारमार्थिक आधार आदेश संबंध नहीं है ऐसा लिया। पारमार्थिक परम प्रयोजन की सिद्धि वाला जो पारमार्थिक संबंध होता है ऐसा संबंध इसमें नहीं है। आगम की चर्चा करने वाला ऐसा करेंगे कि जीव की पर्याय में है, जीव के क्षेत्र में है, कि है उतना हमको पता है, फिर भी पारमार्थिक संबंध उसको हम गिनते हैं नहीं है। देखो कैसा शब्द का प्रयोग है जयचंद जी का, पारमार्थिक संबंध नहीं है। हमें तो पारमार्थिक संबंध से मतलब है, दूसरे संबंध से हमारा कोई मतलब नहीं है। परम मैंने उत्कृष्ट, परम मैंने हित रूप, परम मैंने सार रूप, सुख रूप, अर्थ मैंने प्रयोजन। उत्कृष्ट सुख रूप सार रूप प्रयोजन की सिद्धि में जो संबंध है, ऐसा संबंध कर्म के, नो कर्म के और द्रव्य भाव कर्म के साथ आत्मा को नहीं है, है? हाँ, ऐसा अर्थी शिष्य को पर पारमार्थिक प्रयोजन लेकर के जो समझना चाहता है उनको कहते हैं कि तेरा पारमार्थिक संबंध इसके साथ नहीं है। क्या आचार्य महाराज नहीं जानते कि राग जीव की पर्याय में होता है, जीव का ये परिणमन है, वो नहीं जानते क्या? नहीं जानते क्या? और द्रव्य कर्म भी उनके संयोग में है, एक जीव के कर्म दूसरे जीव के कर्म नहीं होते, सबके कर्म अलग अलग होते हैं, वो क्या नहीं जानते? और नो कर्म भी सबके अलग अलग होते हैं, शरीर आदि वो भी जानते हैं, फिर भी पारमार्थिक संबंध इससे नहीं है। तो जानते हुए भी कुछ कहने के पीछे संबंध छुड़ाने का या भिन्नपना कराने का अभिप्राय है, भेद ज्ञान कराने का अभिप्राय है, जिससे संवर की प्राप्ति होती है। व्यवहार में समझ लेते हैं, देखिए कि जीव को रोग होता है और शरीर पे सूजन आता है, सूजन होता है ना, दुबला आदमी होता है तो सूजन से थोड़ा अच्छा दिखता है, क्या दिखता है? मोटा दिखता है ना, दुबला बड़ा अच्छा नहीं दिखता, लेकिन सूजन होने से वो थोड़ा अच्छा दिखने लगता है। वो शरीर की पर्याय है ना, और शरीर का दिखाव भी अच्छा हो गया, तो इनको सोजा रखने का या नहीं रखने का है, वहां कोई ऐसा दलील करता है क्या, आर्गुमेंट करता है कि ये तो शरीर की पर्याय है ना, दूसरी किसकी है, कपड़े की थोड़ी है, ये तो शरीर की पर्याय है। भैया शरीर की पर्याय होने पर भी ये रोग रोगिष्ट पर्याय है, शरीर की तंदुरुस्ती उसका प्रतिकार करती है। क्या करती है? शरीर की तंदुरुस्ती उसका निषेध करती है, प्रतिकार करती है। मेडिकल साइंस में वो आता है कि नहीं आता है, रेजिस्टेंस पावर कहते हैं, रेजिस्टेंस पावर कहते कि नहीं, कि किसी भी रोगिष्ट अवस्था का प्रतिकार करना, निषेध करना, धक्का देना, निकाल देना, ऐसी स्वतः शरीर में रेजिस्टेंस पावर वाली शक्ति होती है। ऐसे आत्मा में परिपूर्ण निर्दोषता है तो हमेशा दोष का निषेध करती है, है रजिस्ट है, नहीं रोग, रोग तो त्रिकाल नहीं होता ने, आत्मा में रोग त्रिकाल नहीं होता, अवस्था में क्षणिक होता है, कभी होता है कभी नहीं होता है, रोग हमेशा नहीं रहता। रेजिस्टेंस पावर मैंने रोग प्रतिकार शक्ति दोष प्रतिकार शक्ति आत्मा में है। जैसे दुख है वो क्या है, दुख है वो क्या है, दोष है। तो किस कौन से जीव को दोष का निषेध, दुख का निषेध नहीं आता, बताइए एक भी जीव ऐसा कि जो दुख का निषेध नहीं करता, ऐसा एक जीव बता दो संसार में। कहां से दुख का निषेध आता है, दुख नहीं चाहिए, दुख नहीं होना, ऐसा भाव क्यों जीव को आता है कि सुख का इसका स्वभाव है, इसलिए दुख का निषेध आए बिना रहेगा नहीं। जैसे चोर को चोरी करने का धंधा है, व्यवसाय है, रात्रि को चोरी करने को जो निकलता है वो क्या कहेगा कि मेरा धंधा अच्छा नहीं है, लेकिन क्या करूं, पेट भरने के लिए मुझे करना पड़ता है। तो आत्मा निर्दोष पवित्र स्वभाव स्वरूप होने से दोष और दुख का निषेध सभी जीव को आए बिना नहीं रहता। कहते हैं ना, हमारे यहाँ ये बात बुद्धिगम्य हो चुकी है कि भाई कोई अपराध करता है, दोष कर लेता है, गुनाह करता है, उसका कॉन्शियंस बाइट करता है। क्या कहते हैं, कॉन्शियंस बाइट करता है, ऐसा कहते कि नहीं? कॉन्शियंस मैंने क्या, आत्मा, आत्मा उसको करड़ता है, बाइट करता है, मतलब उसको लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ठीक नहीं है, वो अच्छा नहीं है। ऐसा प्रतिकार कहां से होता है कि स्वतः होता है, अंतर में से होता है। लेकिन तीव्र अपराध वाली वृत्ति ऐसा प्रतिकार भाव को, निषेध भाव को अवगणना करके, ओवरटेक करके और अपराध करने में चला जाता है। हाँ, मिथ्यात्व की तीव्रता है, अज्ञान की भी तीव्रता है, इसलिए दूषित भाव चालू रहते हैं, फिर भी स्वभाव अपना काम किए बिना नहीं रहता। वो जैसे घाव पड़ता है, छेरी चाकू लग जाता है, तो जॉइंट हो जाता कि नहीं, स्वतः घाव रुझान आती है कि नहीं आती है, हड्डी टूट जाती है, डॉक्टर क्या कहते हैं, 6 हफ्ता लगेगा। डॉक्टर को अगर कोई ऐसा कहे कि हमें तो बहुत धंधा व्यापार में हमारी उपस्थिति की उतनी जरूरत है और हमारी इतने हमेश की कमाई है कि हमको शाम को फिट कर दो, सब हम चल जावे, ऐसा कर दो, पैसा जितना है इतना ले लो, हम कमा लेंगे, क्या कहेंगे? ये कुदरत का काम है, हड्डी का अनुसंधान होना ये कुदरत का काम है, दवाई उसमें कुछ करती नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि अपना अपना जो स्वभाव है वो स्वभाव स्वतः कार्यशील रहता है, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसलिए कहते हैं कि हमारा मोक्ष मार्ग है उसमें अकर्तापना मुख्य होता है, कर्तापना का नाश हो करके अकर्तापना मुख्य रहता है। हाँ, कहा कि नहीं, करना सो मरना बराबर है, मैंने करने की उपाधि वही दोष है, कर्तृत्व वो मिथ्यात्व का दोष है, इसलिए उसमें आत्मा का भाव प्राण की हानि होती है, इसलिए ऐसा कहने में आया है। भाव प्राण मैंने शांति, तो कहते हैं कि संबंध होने पर भी वो पारमार्थिक आधार आदि संबंध नहीं है। प्रत्येक वस्तु को अपना अपना आधार आधेपना अपने अपने में ही है। अपना ज्ञान से यह सिद्धांत का, ये वस्तु स्थिति का हमें अनुभव करना चाहिए कि मेरा ज्ञान किसके आधार से उत्पन्न होता है, उसके उत्पन्न कराने वाला कौन, ज्ञान को उत्पन्न कराने वाला कौन है, क्या ग्रंथ ज्ञान को उत्पन्न कराता है, क्या वाणी ज्ञान को उत्पन्न करती है। आत्मा में जो ज्ञान की उत्पत्ति होती है वो स्वयं अपने ज्ञान शक्ति में से उत्पत्ति होती है, हैं? ज्ञान शक्ति में से आता है, ज्ञान अपने ज्ञान भंडार अनंत ज्ञान सामर्थ्य। निकलता ही रहता है, जैसे वो उफान आता है ना, उभरो भाषण में बाहर दूध निकली जाए, दूध का उफान आता है, वैसे उतना भरा है, वो तो पोला है, वो तो नक्कर है, घनिष्ठ है, उतना ज्ञान घन आत्मा है कि हर प्रदेश में से अनादि अनंत काल तक वो ज्ञान का प्रभाव बहता है, फिर भी अक्षय पात्र है, आत्मा अक्षय पात्र है, उसमें ज्ञान की क्षति या कमी कभी होती नहीं है। बस मैं त्रिकाल शाश्वत मेरे ज्ञान सुख आदि अनंत सामर्थ्य से भरा हूं, ऐसा अपना सामर्थ्य का आधार जिसको मिलता है उसका परिणमन और भवन बदल जाता है, कि उसको किसी की परवाह होती नहीं। मैं मेरे ज्ञान और सुखादि से परिपूर्ण हूं और पर पदार्थ से मैं शून्य हूं, क्या हूं, शून्य हूं। तो जिससे मैं शून्य हूं इसका आधार लेने से क्या फायदा, इसकी चिंता करने से क्या फायदा, इसका भय क्या कैसे हो सकता है, और मेरे स्वरूप से मैं अधूरा नहीं हूं तो फिर मुझे चिंता काहे की, कुछ लाने की उसमें कोई जरूरत नहीं है। बस ऐसे ही सभी प्रकार के विकल्प मात्र का नाश होने का कारण ये वस्तु स्वरूप स्वयं ही है, लेकिन आधार अपना आना चाहिए। आधार आधे संबंध की बात करने का अभिप्राय भी यह है इधर कि आश्रय करवाना है, स्वयं का आश्रय करवाना है। भान होता है उसमें आश्रय साथ होता है, बिना आश्रय भान होता नहीं है। जिसको आत्मभान कहते हैं वो आत्मा आश्रय पूर्वक होता है, तो उसमें अवलंबन और आधार अपना स्वयं का स्वरूप का आता है, तभी उसको भान हुआ ऐसा कहने में आता है। इसलिए प्रत्येक वस्तु को अपने अपने में आधार आधेपना स्वयं अपने में ही है, इसलिए उपयोग उपयोग में ही है और क्रोध क्रोध में ही है, उपयोग में क्रोध नहीं, क्रोध में उपयोग नहीं। इस प्रकार से भेद विज्ञान बराबर यथार्थ रूप से सिद्ध हुआ, उसी प्रकार से आधार आधेपणा के पहलू से अनुभव गोचर करते हैं तो अच्छी तरह यथार्थ रूप से भेद ज्ञान की प्राप्ति होती है, सिद्ध होता है मतलब प्राप्त होता है, और भेद ज्ञान होता है तो उसके फुल स्वरूप स्वानुभव और शुद्ध उपयोग और सम्यक दर्शन आदि धर्म की प्राप्ति होती है। भाव कर्म वगैरह का और उपयोग का भेद जानना या अनुभव करना यही भेद विज्ञान है। यहाँ पर ये तीन गाथा पूरी होती है, इसके पर जो कलश है वो 126 नंबर का आचार्य महाराज ने कलश लिखा है। कलश टीका में राजमल जी ने ये बात बहुत अच्छी तरह दिया है, फिर भी इधर थोड़ा मार्मिक बात देखना हो तो जो जयचंद जी का भावार्थ है उसमें पढ़े हम थोड़ा, तो जरा अच्छा इसमें बहुत थोड़ी बात मार्मिक लिया है। ज्ञान तो चेतना स्वरूप है, भावार्थ लेंगे फिर लेंगे पाजे वो कलष्टिका में से लेंगे, भावार्थ ले ले में इधर। ज्ञान तो चेतना स्वरूप है और रागादिक पुद्गल विकार होने से जड़ है। क्या रागादिक पुद्गल विकार ले लिया, चैतन्य विकार नहीं लिया इसलिए वो जड़ है। द्रव्य कर्म तो जड़ है, नौकर्म भी जड़ है और रागादि को भी जड़ बोल दिया, वो तीव्र निषेध की बात है। परंतु अज्ञान से ऐसा मालूम पड़ता है मानो कि ज्ञान और ज्ञान भी रागादि रूप हो गया है, ऐसा भासित होता है, ऐसा लगता है। भासित होता है मतलब क्या, ऐसा लगता है कि ज्ञान रागादि रूप हो गया है या मैं रागादि रूप हो गया हूँ, ज्ञान मैंने मैं। अर्थात ज्ञान और रागादि दोनों एक रूप जड़ रूप भासित होता है। जबी अंतरंग में, देखिए क्या कहा, जबी आत्मा के भीतर के अंग को अंतरंग में ज्ञान और रागादि का भिन्न पाड़ने का तीव्र अभ्यास करने से भेद ज्ञान प्रकट होता है, तभी ऐसा मालूम पड़ता है कि ज्ञान का स्वभाव तो मात्र जानने का ही है। ज्ञान में जो रागादि की कलुषता या आकुलता संकल्प विकल्प भाषित होते हैं ये सब पुद्गल विकार हैं, जड़ है, ये चैतन्य का जोर से कहा है, ऐसा जोर है इसमें कहने के पीछे। तो क्या कहा कि ज्ञान और रागादि का अलग करने का तीव्र अभ्यास अंतरंग में करने से वेद विज्ञान होता है। जो इस गाथा में समझने लायक कोई चीज है तो वो वेद विज्ञान की विधि कार्य पद्धति कैसी है, वही समझने की यहाँ पर खास बात है। तो वही बात है, ये बात इस पंक्ति में आती है कि जब अंतरंग में मैंने सूक्ष्म अनुभव दृष्टि से देखे कि ज्ञान में क्या अनुभव होता है, तो ज्ञान में ज्ञान वेदन का अनुभव होता है और रागादिक जुदा है, अलग है, वो ज्ञान वेदन में उसका अस्तित्व अनुभव गोचर होता नहीं है। ऐसा अलग करने का तीव्र प्रयोगाभ्यास होता है। तीव्र अभ्यास का क्या मतलब, सतत प्रयोग चलना, उसको तीव्र अभ्यास इधर कहने में आता है। ऐसा करने से वेद ज्ञान प्रकट होता है तो भिन्न रूप से चैतन्य स्वरूप का अनुभव होता है और पारमार्थिक संबंध नहीं है ऐसा स्पष्टतया अनुभव हो जाता है। तो ये भेद विज्ञान अनुभव, ऐसा ज्ञान और रागादि का भिन्न भिन्न स्वाद आता है, स्वाद मैंने वेदन आता है, भिन्न भिन्न अर्थात अनुभव होता है। जब ऐसा भेद ज्ञान होता है तब आत्मा आनंदित होता है। कैसा होता है आत्मा, आत्मा आनंदित हो जाता है, यही प्रयोजन है। जीव को सुख नहीं है, चैन नहीं है संसार में, ये भेद ज्ञान करने से ही आत्मानंद की प्राप्ति, निराकुल आनंद की प्राप्ति होती है। और क्या लगता है फिर उसको, कि उसको लगता है कि पोते सदा ज्ञान स्वरूप ही रहा है, अनादि से मैं तो ज्ञान स्वरूप ही रहा हूँ, रागादि रूप कभी हुआ ही नहीं। अज्ञान अवस्था में मिथ्यात्व काल में रागादि रूप हुआ था कि नहीं हुआ, कि ज्ञान होने पर ऐसा मालूम पड़ता है कि मैं तो कभी रागादि रूप हुआ ही नहीं हूं। हाँ वो भूल थी मेरी, ये मेरी भूल थी। जैसे कोई खोटा समाचार आता है, अभी तुम्हारे घर में आग लग गई है, क्या बाजार में बैठे हो, मंदिर में बैठे हो और ऐसा समाचार आ जावे तुम्हें घर में आग लगी है, तो दुख होता है ना, अरे घर में आग लगी है, सब जल जाएगा, पैसे जल जाएंगे, कपड़े जल जाएंगे, फर्नीचर बहुत नुकसान हो जाएगा, यहाँ आकुलता होने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद समाचार आता है कि आग तो लगी है लेकिन पड़ोस के घर में लगी है, तुम्हारे घर में नहीं लगी है। तो फिर क्या होता है, अरे फालतू दुख हुआ, अभी थोड़ी देर पहले दुख हुआ, ये फालतू हुआ, बस ऐसा होता है कि मैं तो सदा ज्ञान स्वरूप ही रहा हूं, रागादि रूप कभी हुआ ही नहीं। इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं कि हे सत्पुरुषों, तुम आनंदित हो, मुदित हो, सुखी हो, दुखी तुम नहीं हो। ये तो बात रही कही रागादि की, भव भ्रमण की भी बात ऐसी ही है कि जब शाश्वत अजर अमर पद का ज्ञान होता है स्वानुभव में, तब लगता है कि ये भव रूप में हूं नहीं। ज्ञानी धर्मात्मा अपने वर्तमान भव से उदासीन हो जाता है, जैसे पड़ोसी का नुकसान से उदास हो गया कि नहीं हो गया, कि दुखी रहा, उदास हो गया, ऐसा वो उदास हो जाएगा, सारे भव से उदास हो जाता है। उसको ज्ञानी को भव उदासी बतलाया है अनुभव प्रकाश। ज्ञानी कैसे होते हैं कि भव उदासी है, तो सिर्फ वर्तमान भव का उदासपना है उतना ही नहीं, लेकिन अनंत काल में 84 लाख योनि में जितने भी भव धारण किए व्यवहारिक तौर से, उनको ऐसा अनुभव होता है कि मेरे कुछ भव हुआ ही नहीं, मैंने माना था। जैसे अभी माना कि मैं मनुष्य हूं, वास्तव में आत्मा मनुष्य नहीं है, आत्मा तो आत्मा है ज्ञान स्वरूप की। तो अनंत काल में अनंत भव मेरे हुए ही नहीं, मैं तो ज्ञान स्वरूप ही अनंत काल से रहा हूं और अनंत काल तक ज्ञान स्वरूप ही रहूंगा, न रागादि रूप होने वाला हूं न कुछ भव रूप भी होने वाला हूं। ये अनुभव झूठा है और यही उपाधि रूप दुख रूप है, उसमें ही दुख है। ये ज्ञान स्वरूप के अवलंबन से, आधार से मतलब अवलंबन से सारी उपाधियां छूट जाती है और ज्ञानी आत्मा ज्ञानी होकर के हमेशा के लिए सुख का अनुभव करने लगता है। तो परमानंद की प्राप्ति और परम सुख की प्राप्ति तक ये सुख बढ़ते बढ़ते पूर्ण ही हो जाता है। उसमें पंचम काल है इसलिए पूर्ण सुख नहीं होगा, ऐसा विकल्प भी बीच में नहीं आता है। अभी तो पंचम काल है ने, अभी तो मोक्ष नहीं होता है ने, ऐसा स्मरण नहीं रहता है। ये आत्मिक सुख जिसको उत्पन्न हुआ उसको आगे जा करके पूर्ण मोक्ष सुख की प्राप्ति होने वाली है ही। काल से क्या मतलब है, देर सवेर हो गए इससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, सुनने पर भी रुचि होता है तो जिसके जिसकी बात से शांति हुए, क्या जिसकी जिस शांत स्वरूप आत्मा की, अनंत शांत स्वरूप आत्मा है, उसकी बात कहने सुनने पर भी थोड़ी शांति तो हो जाती है, तो अनुभव में कितनी शांति होगी और भीतर में कितनी शांति भरी होगी कि जिसकी बातों में थोड़ी शांति आ जाती है, साता उत्पन्न हो जाती है। मूल चीज कितनी जलद होगी, जैसे ये एसिड होते हैं ना तेजाब, तो ये अपना सोने का जो जेवर है, हीरा का जेवर, उसको साफ करते हैं ना, उसमें क्या है वो क्लीनिंग पावर होता है, मैल को धोने का एसिड धोता है ना, तो सीधा एसिड में तो नहीं डाले क्योंकि साफ कैसे करे, फिर जल जावे उंगली, जल जावे, तो उसको डाइल्यूट करना पड़ता है। पानी में एसिड डालता है, थोड़ा मंद असर हो जाता है तो भी वो मैल को धो देता है, तो उसकी जलदता कितनी। ऐसे आत्मा में शक्ति की जलदता कितनी कि शांति उतनी जलद शांति है कि बात करने में शांति हो जाती है। इसलिए ज्ञानी कहते हैं कि आत्मा का जो शांति आदि गुण है, इसका गुणगान करते रहना, विकल्प में हुए तो उसका गुणगान करते रहना और निर्विकल्प दशा में उसका अनुभव करते रहना। इसलिए दुख और अशांति का नाश हो जाएगा। तो इस पर जो राजमल जी की टीका है वो बहुत अच्छी है, 126 कलक पर। हम यहाँ से जो भी थोड़ा समय है कल का और आज का, कल का भी सुबह रह गया ना, चैद्रूप्यं जड़ रूपतां च दधतो कृत्वा विभागं द्वयोः अंतरदारुण दारणेन परितो ज्ञानस्य रागस्य च वेदज्ञानम् उदेति निर्मलमिदं मोदध्वं मध्यासिताः शुद्धज्ञानघनोगम एकमधुना संतोद्वितीयश्चुताः। ये भगवान अमृतचंद्राचार्य का श्लोक है, उसका एक एक शब्द का टीका के साथ अर्थ करेंगे। इदम वेद विज्ञान वेद ज्ञानम उदेति, यहां से शुरू करते हैं। इदम मैंने प्रत्यक्ष, ऐसे जीव का शुद्ध स्वरूप का अनुभव प्रकट होता है। क्या कहते हैं कि जीव का स्वरूप है वो कैसा है, कि सहज प्रत्यक्ष ये जीव का स्वरूप है। यहां से इदम से शुरू किया टीका करने का। इदम मैंने प्रत्यक्ष, शुद्ध जीव का जो स्वरूप है वो निरावरण है और स्वभाव से स्वरूप से ही प्रत्यक्ष है, इसका अनुभव प्रकट हुआ। अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष ज्ञान में इसका अनुभव हुआ, वेद विज्ञान पूर्वक अनुभव हुआ, इसलिए वेद विज्ञान प्रकट हुआ ऐसा कहने में आता है। देखो प्रत्यक्षता से तो शुरू करते हैं। प्रत्यक्षता एक ऐसा प्रकार है ज्ञान में, प्रत्यक्षता का प्रकार ऐसा है कि जिसकी असर है वो अनंत काल तक रहती है, प्रत्यक्षता के असर अनंत काल तक रहती है, परोक्षता के असर नाबूद हो जाती है, निर्मूल हो जाती है, जैसे स्मरण विस्मरण हो जाता है ना, क्योंकि मति ज्ञान में परोक्ष जानकारी है। और हम अखबार पढ़ते हैं, कल क्या पढ़ा था अखबार में याद नहीं रहता, बहुत से समाचार पढ़ते हैं भूल जाते हैं। अरे क्या जीव को दुख होता है ना, दर्द होता है, वेदना होती है, दर्द मिट जाने से भूल जाते हैं, भूलते कि नहीं भूलते। ऐसे संसार के दुख के और सुख के अनेक प्रकार के प्रसंग प्राप्त होते हैं, और सुखी दुखी भी जीव होता है, फिर कालांतर में भूल जाता है कि नहीं भूल जाता है। हाँ? जैसे दुख हुआ ही नहीं हो, असर नहीं रहती परिणाम पर, क्या कारण है? ये सभी प्रकार का अनुभव परोक्ष ज्ञान में होता है। परोक्ष ज्ञान की असर वैसे ही इतनी ज्यादा होती ही नहीं, ये व्यवहार प्रत्यक्ष को भी परोक्ष कहते हैं। व्यवहार प्रत्यक्ष है, इंद्रिय ज्ञान है वो परोक्ष ज्ञान है, लेकिन जैसे देखने की बात सुनने में आती है तो इतना असर नहीं होगा। जैसे कोई एक्सीडेंट को देखता है और सुनता है पेपरों में, तो सराती उसकी क्या, पेपर में चारों एंगल से चारों बाजू से फोटो खींच करके छुपा हो, और देखने वाले ने अपने एक ही साइड से देखा हो, किसकी असर होगी? देखने की असर होगी। व्यवहार प्रत्यक्ष परोक्ष में भी उतना फर्क है कि नहीं? कि क्रिकेट का गेम देखते हैं कि नहीं टीवी में, तो शारजा में जो क्रिकेट चलती है उसको 8 कैमरा से 8 साइड बताएंगे, और उसमें स्लो फास्ट सब बताएंगे कि देखियो तो बहुत तेजी से गेम चलती है, फटका भी इतना 1 सेकंड में जा रहा है, फिर उसको बताते हैं ना आस्ते 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 कैसे घुमाता है बैट, तो फिर वहां देखने को जाना कि नहीं जाना। इधर तो मुफ्त में देखने को मिलता है, टीवी खरीद दिया है तो फिर रोज तो पैसा देना काहे नहीं, और वहां जावे तो आने जाने का और लोडिंग बोर्डिंग का खर्चा हो जावे, तो 10-20-25 हजार खर्च करके वहां क्यों जाते हैं? जाते हैं कि नहीं जाते? असर आती है उसके परिणाम, जिसको उसका सुख माना है तो सुख लेने के लिए वहां जाते हैं, मिलता है नहीं मिलता है दूसरी बात है, लेकिन उसकी मान्यता में तो है कि जो टीवी में आनंद आएगा वो प्रत्यक्ष देखने में जैसा आनंद आता है वैसा नहीं आता, तो प्रत्यक्ष का असर बहुत रहता है। ऐसा ज्ञान स्वरूपी आत्मा अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष है, और इसका नमूना उसका सैंपल जो उपयोग है ज्ञान का, जो योग है उस उपयोग का, जो अंतरंग है उस अंतरंग में, जो वेदन है उस वेदन में प्रत्यक्ष अंश प्रकट है। इसलिए जिसको भाव भाषण होता है उसमें अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष आत्मा कैसा होता है इसका भाव भाषण हो जाता है, यहां से होता है। वरना कोई अतीन्द्रिय स्वरूप का मन के इंद्रिय ज्ञान के माध्यम से ज्ञान होने का कोई इलाज नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई उपाय नहीं है। ये अनुभवी पुरुषों ने शास्त्रों में इस बात को बहुत अच्छी तरह रखा है। और जब प्रत्यक्ष अंश है स्वभाव जो कि जिसमें सामर्थ्य अनंत है, उसको स्वभाव की प्रत्यक्षता की भी अनंतता प्रतिभाषित हो जाती है, जिसको ऐसा मालूम हुआ कि मेरा स्वरूप भी अनंत प्रत्यक्ष है, ऐसे पर्याय में परोक्षता कहाँ तक टिकेगी, कहाँ तक चालू रह सकेगी? जैसे दुख दुख का अभाव सुख के सद्भाव से होता है, शांति का सद्भाव से अशांति का अभाव हो जाता है, और प्रकाश के सद्भाव से अंधेरा का नाश होता है, वैसे प्रत्यक्षता के सद्भाव से परोक्षता का नाश हो ही जाता है। परोक्षता रह नहीं सकती, उसको इतनी असर आती है, इतनी असर आती है भाव भाषण से ही कि अरे मैं चैतन्य गोला बिल्कुल अनंत प्रत्यक्ष स्वरूप से ही होने को, उतना उस पर वजन आता है, उस पर उतना जोर चला जाता है कि ये परोक्षता है, उसको उत्पन्न होने की बंद हो जाती है, इंद्रिय ज्ञान ही बंद हो जाता है, अतिंद्रिय ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है। परोक्षता में तो संतोष नहीं होता ना, परोक्षता में रस नहीं आता है। जो प्रत्यक्ष में रस आता है वो परोक्ष में रस नहीं आता, इसलिए तो उतना दृष्टांत ले लिया कि भय का भी दृष्टांत ऐसा है कि एक्सीडेंट, भय का भी दृष्टांत ऐसा है कि एक्सीडेंट देखे दूसरे का जिससे हमारा लेना देना कुछ नहीं है, ऐसा बनता है। ट्रेन का और बस का एक्सीडेंट होता है ना, देख लेता है ना उस बस में मुसाफरी करने वाला, सारी जिंदगी भूल नहीं सकता, भूल सकता नहीं, उतना भय का तीव्र रस पैदा हो जाता तो बस में बैठने ही कभी नहीं चाहता, बैठते ही उसको भय होने लगता है। ऐसा केस हमने देखा है, इसका मतलब क्या? बहुत गहरी चोट आती है परिणाम पर, प्रत्यक्ष ज्ञान की बहुत गहरी चोट आती है। ये भी प्रत्यक्ष है, वास्तव में परोक्ष है, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान प्रत्यक्ष, और वो भी स्वयं, और इसमें भी इसकी अनंतता स्वभाव की। भाव भाषण में कितनी चोट आवे कि उतनी चोट आवे कि उसकी असर सादी अनंत वृद्धिगत होकर के पूर्ण हो जाएगी, नाश होने का तो सवाल है ही नहीं। इसलिए कहते हैं कि उस असर में आयु पूरा हो जाना हो जाता है, संस्कार डल जाता है, दूसरे भाव में उसको अनुभव हो जाता है बिना ज्ञानी के गुरु के सिवा, यही कारण है इसका। और कोई सम्यक दर्शन से च्युत होता होकर मिथ्या दृष्टि हो जाता है तो भी वो फिर से सम्यक दर्शन को ग्रहण करता है, स्वानुभव में आता है, इसका यही कारण है कि उन्होंने एक दफे प्रत्यक्ष अस्तित्व को ग्रहण किया है, यानी अस्तित्व की प्रत्यक्षता को वो चोट उसने ऐसी लग गई है कि उसका संस्कार आत्मा में से कभी जाने वाला नहीं है, ऐसी बात हो जाती है। यहाँ से ये टीका चालू होती है।